एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की दुनिया में और हमारा नजरिया होगा देवदत्त पटनायक का। हमारे पास उनके काम पर आधारित दो सारांश हैं।
नमस्कार।
हाँ, और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानियां दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पटनायक के हिसाब से ये पुरानी कथाएं आज भी हमारे लिए, हमारी लाइफ, हमारे समाज के लिए इतनी रेलेवेंट क्यों हैं?
सही कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है ना कि ये कथाएं या तो बहुत पुरानी हो गई हैं या फिर थोड़ी कंफ्यूजिंग है।
बिल्कुल।
या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से कट से गए हैं।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि पटनायक के नजरिए से इस गैप को थोड़ा कम करें, देखें कि ये प्राचीन ज्ञान आज कैसे काम आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं, देवदत्त पटनायक हैं कौन आखिर?
हाँ, ये काफी दिलचस्प है। वो असल में एक मेडिकल डॉक्टर थे।
तो डॉक्टर?
हाँ, और डॉक्टरी के बाद उन्होंने अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी पौराणिक कथाओं को समझने समझाने में लगा दी। 50 से ज्यादा किताबें लिखी हैं उन्होंने, हजारों लेख लिखे हैं।
कमाल है। और सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, उनका अनुभव तो काफी फैला हुआ है।
बिल्कुल। मेडिकल बैकग्राउंड, फिर MBA किया, कॉर्पोरेट जगत में भी काम किया। फ्यूचर ग्रुप में तो वो चीफ बिलीफ ऑफिसर भी थे।
चीफ बिलीफ ऑफिसर?
हाँ,
ये तो अनोखा टाइटल है,
है ना? तो ये सब उनके नजरिए को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर ग्रंथ नहीं पढ़ते, बल्कि वो ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि अलग अलग समुदाय इन कथाओं को असल में जीते कैसे हैं।
तो एक तरह से कल्चरल ट्रांसलेटर हुए वो?
हाँ, कह सकते हैं, प्राचीन ज्ञान और आज की चुनौतियों के बीच पुल बनाने वाले। और खास बात यह है, वो माइथोलॉजी को ना तो अंधविश्वास मानते हैं कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं, और ना ही पत्थर की लकीर कि बस जैसा लिखा है वैसा ही मानो। नहीं, उनके लिए ये मानव मनोविज्ञान, समाज, यहाँ तक कि मैनेजमेंट को समझने का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, एक गहरा जरिया है।
अच्छा, तो उनके काम का निचोड़ क्या है? मतलब वो कहना क्या चाहते हैं इन कथाओं के जरिए?
देखिए, उनका मेन पॉइंट ये है कि भारतीय पौराणिक कथाएं सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां भर नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये असल में एक फ्रेमवर्क है, एक डायनामिक सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क।
फ्रेमवर्क किस चीज का?
रियलिटी को और ह्यूमन नेचर को समझने का। ये हमारी संस्कृति के DNA जैसा है, समझ लीजिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह की समझ, एक विजडम पास ऑन करता है।
तो उनका मकसद इतिहास बताना नहीं है या कोई मॉरल कोड देना कि ये सही है ये गलत?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद है एक वर्ल्ड व्यू देना, एक नजरिया, जिसे वो दर्शन कहते हैं, यानी देखने का एक तरीका। और इस नजरिए में क्या खास है, ये सब्जेक्टिविटी को मानता है, मतलब आपकी सच्चाई, मेरी सच्चाई।
ओके।
ये साइक्लिकलिटी को मानता है, मतलब चीजें गोल घूमती हैं, एक सीधी लाइन में नहीं चलती। और ये कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को बहुत महत्व देता है।
दर्शन यानी देखने का तरीका।
हाँ, तो उनका काम हमें इन कथाओं को सिर्फ फेरी टेल्स की तरह नहीं, बल्कि एक कोहेरेंट फिलोसॉफिकल सिस्टम की तरह देखने में मदद करता है। वो सिंबल्स को, कैरेक्टर्स को, जो मोटिव्स बार बार आते हैं, उन्हें डिकोड करते हैं।
और उससे क्या निकलता है?
उससे धर्म, कर्म, मोक्ष जैसे जो बड़े आइडियाज हैं, उनका कालातीत ज्ञान सामने आता है, ताकि हम आज की जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है उसे बेहतर समझ सकें।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। आपने कहा पश्चिमी और भारतीय सोच में फर्क।
हाँ, पटनायक अक्सर ये पॉइंट उठाते हैं कि जो वेस्टर्न या कहें अब्राहमिक सोच है, वो ज्यादातर लीनियर होती है। एक लाइफ, एक जजमेंट, एक डेस्टिनेशन, है ना?
हाँ, एक सीधी रेखा की तरह।
बिल्कुल। जबकि भारतीय या जिसे वो धार्मिक कहते हैं, वो सोच ज्यादातर साइक्लिकल है, चक्रीय। यहाँ टाइम भी सीधा नहीं चलता, ब्रह्मांड बनता है, पलता है, फिर नष्ट होता है। योग, कल्प और ये साइकिल चलती रहती है, एंडलेस।
कोई एक फिक्स्ड बिगिनिंग या एंड
नहीं, बस निरंतर बदलाव, कॉन्स्टेंट चेंज।
ये चक्रीय सोच आजकल की फास्ट पेस्ड दुनिया में थोड़ी मुश्किल नहीं लगती अपनाने में, जहां सब आगे भागना चाहते हैं?
लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरी समझ भी छिपी है। ये हमें सिखाती है कि ना तो कामयाबी हमेशा रहती है, ना ही नाकामी।
अच्छा।
हाँ, जैसे मौसम बदलते हैं, दिन रात होते हैं, वैसे जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। बिजनेस साइकिल देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, सब ऊपर नीचे होता है। ये समझ हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है, रेजिलियंस सिखाती है, लचीलापन।
और इसी से जुड़ा है दर्शन वाला आइडिया, व्यक्ति परक सत्य, इसका क्या मतलब है? क्या कोई एक सच नहीं होता?
पटनायक के अनुसार परम सत्य शायद एक हो, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो निराकार सर्वव्यापी रियलिटी, जिसके हम सब देवी देवता सब रूप हैं। लेकिन हम इंसान अपनी लिमिटेशंस के साथ उसे अपने अपने नजरिए से ही देख पाते हैं।
तो मेरा सच और आपका सच दोनों वैलिड हो सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, ज्ञान इसी में है कि हम दूसरे के सच की, दूसरे के दर्शन की इज्जत करना सीखें, बजाय ये कहने के कि सिर्फ मैं सही हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, दो गवाह हैं, दोनों ने अलग अलग एंगल से देखा।
हाँ तो दोनों की कहानी थोड़ी अलग होगी।
होगी ही, पर दोनों अपनी अपनी जगह सच बोल रहे हो सकते हैं। तो ज्ञान इसमें नहीं कि एक को गलत साबित करें, बल्कि ये समझें कि अलग अलग पर्सपेक्टिव क्यों हैं।
तो पौराणिक कथाएं वो न तो ऑब्जेक्टिव साइंस है, न ही पूरी तरह सब्जेक्टिव आस्था।
हाँ, पटनायक कहते हैं ये तीसरा तरीका है, सिंबल्स के जरिए, रूपकों के जरिए सच्चाई को समझना। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जवाब थाली में परोसकर नहीं देती। अब जैसे त्रिमूर्ति को ही लीजिए, ब्रह्मा विष्णु शिव, हम अक्सर इन्हें बस तीन अलग अलग भगवान मान लेते हैं, है ना, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर।
हाँ यही पढ़ा है ज्यादातर।
पर पटनायक कहते हैं इन्हें जरा अलग तरह से देखें, ये असल में कॉस्मिक फंक्शंस हैं, ब्रह्मांड की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें इंसानी रूप दिया गया है।
अच्छा कैसे?
जैसे ब्रह्मा, वो क्रिएटर हैं, ठीक है, पर उनकी पूजा इतनी क्यों नहीं होती? शायद इसलिए कि क्रिएशन के बाद उनका रोल एक तरह से पूरा हो जाता है, और कथाओं में कभी कभी वो थोड़े ईगो वाले भी दिखते हैं या अपनी रचना के नतीजों से अनजान।
दिलचस्प है। और विष्णु, उनकी तो बहुत पूजा होती है।
हाँ, क्योंकि वो प्रिजर्वर हैं, मेंटेनर, वो धर्म यानी कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखते हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है, गड़बड़ होती है,
तो वो अवतार लेते हैं।
बिल्कुल, संतुलन बनाने के लिए। और उनके अवतारों में भी देखिए कितनी वैरायटी है। एक तरफ राम है जो नियमों पर चलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, आइडियल राजा, वो दिखाते हैं कि नियमों का पालन कितना जरूरी है व्यवस्था के लिए।
पर कभी कभी ये नियम दुख भी देते हैं, जैसे सीता के साथ हुआ।
सही कहा, राम का धर्म निभाना व्यवस्था तो लाता है पर पर्सनल ट्रेजेडी भी। और दूसरी तरफ कौन है? कृष्ण।
हाँ कृष्ण तो बिल्कुल अलग है।
एकदम, वो नियमों को जरूरत पड़ने पर तोड़ते भी हैं, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थोड़े शरारती भी। वो दिखाते हैं कि धर्म हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो कॉन्टेक्स्चुअल होता है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है।
मतलब बड़ी पिक्चर देखो।
हाँ, वो कहते हैं कि कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए छोटे नियम तोड़ने पड़ते हैं।
और शिव, वो तो इन दोनों से ही एकदम अलग लगते हैं।
बिल्कुल, शिव वैरागी हैं, एसेटिक, वो संसारिक विष्णु के एकदम उलट हैं, वो डिटैचमेंट, वैराग्य, ईगो के विनाश और मोक्ष यानी इस जन्म मरण के चक्कर से आजादी के प्रतीक हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। वो हमें सिखाते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी उससे चिपके मत रहो।
और देवियों का क्या स्थान है इन देवताओं के साथ? अक्सर उन्हें सिर्फ वाइफ्स की तरह देख लिया जाता है।
ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है और पटनायक इस पे बहुत जोर देते हैं। देवी सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है, वो शक्ति है।
शक्ति
मतलब? मतलब वो फंडामेंटल एनर्जी, वो मौलिक ऊर्जा जिसके बिना पुरुष देवता भी अधूरे हैं, पावरलेस हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रकृति मैटर एनर्जी और पुरुष कॉन्शियसनेस।
अच्छा,
सृष्टि तभी होती है जब ये दोनों मिलते हैं। प्रकृति के बिना पुरुष कुछ कर नहीं सकता और पुरुष के बिना प्रकृति अंधी है।
तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सब शक्ति के ही रूप हैं।
हाँ, लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी हैं, वो विष्णु जो दुनिया चलाते हैं के साथ हैं, सरस्वती ज्ञान कला की देवी हैं, वो ब्रह्मा जो रचते हैं के साथ हैं, और पार्वती या दुर्गा या काली, वो तो शिव जो वैरागी भी हैं और विनाशक भी के साथ हैं, और वो फेमिनिन पावर का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाती हैं।
पूरा स्पेक्ट्रम मतलब?
मतलब सौम्य रूप भी, माँ का रूप भी, और जरूरत पड़ने पर उग्र योद्धा का रूप भी। काली का रूप देखिए, ये जो देवताओं और देवियों की इतनी वैरायटी है ना।
हाँ।
ये असल में हमारी अपनी चेतना की कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे अंदर की अलग अलग साइकोलॉजिकल फंक्शंस का ही प्रतीक है।
अच्छा, अब आते हैं देव और असुर पर। बचपन से तो यही सुना कि देव अच्छे, असुर बुरे, क्या ये इतना सिंपल है?
पटनायक कहते हैं बिल्कुल नहीं। पहली बात तो याद रखिए, देव और असुर सौतेले भाई हैं, दोनों ऋषि कश्यप के संतान।
हाँ ये तो कथाओं में आता है।
और दोनों को चाहिए क्या? एक ही चीज, पावर, वेल्थ, अमरता। फर्क उनके नजरिए का है, उनकी सिचुएशंस का है। देव वो हैं जिनके पास सत्ता है, पावर है, लेकिन वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं छिन न जाए।
उन्हें कह सकते हैं अमीर पर असुरक्षित।
हाँ बिल्कुल, द इनसिक्योर हैव्स। और असुर वो एम्बिशियस हैं, पावर चाहते हैं, ताकतवर भी हैं, पर अक्सर एनवी ईर्ष्या से भरे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनका हक नहीं मिला। वो हैं महत्वाकांक्षी पर वंचित, द इनसिक्योर हैव नॉट्स।
तो ये अच्छे बुरे की लड़ाई नहीं है,
कम है, ये ज्यादातर जिनके पास है और जिन्हें चाहिए के बीच का स्ट्रगल है। और यही स्ट्रगल पटनायक कहते हैं यूनिवर्स का इंजन है। ये हमें ड्राइव करता है क्योंकि पहचान, शक्ति, मान्यता की भूख तो हम सब में है ना।
बात तो सही है, समुद्र मंथन की कहानी इसका अच्छा उदाहरण लगती है फिर तो।
बेहतरीन उदाहरण। देखिए ना, अमृत चाहिए तो देव और असुर साथ आ जाते हैं, कोलाबरेट करते हैं, मिलकर मेहनत करते हैं।
हाँ, पहाड़ उठाते हैं, वासुकी नाग को रस्सी बनाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन जैसे ही अमृत निकलता है फल सामने आता है,
लड़ाई शुरू।
हाँ, फौरन लड़ पड़ते हैं कि किसे मिलेगा। ये क्या दिखाता है कि हमारा कॉपरेशन भी अक्सर सेल्फ इंटरेस्ट से ड्राइव होता है और रिसोर्सेस के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष तो हमेशा चलता रहता है। यहीं पर पटनायक की वो बात याद आती है जो मुझे बहुत पसंद है।
कौन सी?
पौराणिक कथाओं में कोई खलनायक नहीं होते, केवल अलग अलग विश्व दृष्टि वाले लोग होते हैं। ये हमें किसी को विलन बनाने से रोकता है, समझने पर जोर देता है।
ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें, देवता, असुर, ब्रह्मांड का चक्र, दर्शन, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं?
ये जुड़ती हैं महाकाव्यों के जरिए, रामायण और महाभारत। यहीं पर वो कर्म और पुनर्जन्म वाला सिद्धांत हमें एक्शन में दिखता है।
कर्म यानी भाग्य, डेस्टिनी?
नहीं, पटनायक इसे डेस्टिनी नहीं मानते, वो कहते हैं कर्म है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे आज के काम हमारे कल को शेप देते हैं, और यही कर्म हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र, जिसे संसार कहते हैं, उसमें बांधता है।
और लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य सिर्फ अगला अच्छा जन्म पाना नहीं है, असली लक्ष्य है इस साइकिल से ही बाहर निकल जाना, मोक्ष पाना।
रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य है, पर महसूस करने में बहुत अलग है ना?
हाँ, बहुत अलग। रामायण को आप कह सकते हैं नियमों की कहानी, आइडियल्स की कहानी। राम धर्म के लिए, नियमों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो एक आइडियल सेट करते हैं। ये व्यवस्था लाता है, पर जैसा हमने पहले कहा, कभी कभी पर्सनल लेवल पर ट्रेजिक भी हो सकता है। और महाभारत?
महाभारत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा मैसी है, रियल लाइफ जैसी। यहाँ कोई हीरो पूरी तरह हीरो नहीं, कोई विलन पूरी तरह विलन नहीं, सब ग्रे है। यहाँ धर्म सीधा सपाट नहीं है, बहुत उलझा हुआ है, सिचुएशनल है।
जैसे कर्ण हैं, भीष्म हैं, युधिष्ठिर खुद हैं। बिल्कुल, कर्ण अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे बैठता है, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में ऐसे बंधे हैं कि अन्याय देखते रहते हैं, युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा हैं कि अपने ही पुण्य के बोझ तले दब जाते हैं, जुए में सब हार जाते हैं।
तो ये क्या दिखाते हैं?
ये दिखाते हैं कि असल दुनिया में सही काम चुनना कितना मुश्किल हो सकता है, नेक इरादे भी कैसे तबाही ला सकते हैं। महाभारत हमें आसान जवाब नहीं देता, वो हमें गहरे सवाल पूछता है। धर्म क्या है? सही क्या है? किसके प्रति आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है?
तो आखिर में ये कहानियां हमारे लिए हैं क्या? बस पुरानी कहानियां?
पटनायक कहते हैं नहीं, ये एक आईना है, एक दर्पण। जब हम कौरवों का लालच देखते हैं, या हनुमान की भक्ति और सेवा देखते हैं, या अर्जुन का कन्फ्यूजन और दुविधा देखते हैं,
तो हम खुद को देखते हैं उनमें।
हाँ, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के संघर्षों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को पहचानते हैं। इन कहानियों का असली मकसद है सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान, खुद को बेहतर समझना।
तो अगर हम पटनायक के नजरिए से सब कुछ समेटें, तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? मुझे लगता है पहली तो यही दर्शन वाली बात है।
हाँ, सत्य की व्यक्ति परखता,
कि कोई एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, या कम से कम हम उसे वैसे जान नहीं सकते। सबके अपने अपने सच हैं, अपने नजरिए हैं, और हमें दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज के जमाने में तो ये बहुत ही जरूरी लगता है, जहां सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं।
बिल्कुल, एम्पैथी और टॉलरेंस। दूसरी बड़ी बात है चक्रियता, साइक्लिकलिटी।
हाँ, कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, कुछ भी परमानेंट नहीं है।
सही, इसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। बिजनेस हो, करियर हो, रिश्ते हो, अच्छा दौर भी आएगा, बुरा भी, यह हमें जमीन से जुड़े रखता है, ह्यूमिलिटी देता है।
तीसरा पॉइंट मुझे लगता है धर्म के बारे में है।
हाँ, कि धर्म कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है, ये प्रासंगिक है, कॉन्टेक्स्चुअल है।
मतलब?
मतलब ये कि सही काम क्या है ये व्यक्ति समय स्थान स्थिति पर निर्भर करता है। जो मेरे लिए धर्म है वो शायद आपके लिए ना हो, या जो आज मेरे लिए धर्म है वो कल ना हो। ऑफिस में मेरी जिम्मेदारी अलग है, घर पर अलग है ना।
हाँ ये बात तो है, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये।
चौथी बात वो संतुलन वाली है, गृहस्थ और सन्यासी के बीच, विष्णु और शिव के बीच।
दुनिया में रहना भी है और उससे डिटैच्ड भी रहना है।
एग्जैक्टली। सांसारिक जिम्मेदारियां भी निभानी है, समाज में कॉन्ट्रीब्यूट भी करना है विष्णु, और साथ ही साथ मन की शांति, आध्यात्मिक खोज, डिटैचमेंट शिव भी जरूरी है। सिर्फ एक के पीछे भागना शायद हमें अधूरा छोड़ दे।
और पांचवा?
पांचवा ये कि ये कथाएं महज कहानियां नहीं बल्कि सिंबॉलिक भाषाएं हैं। ये गहरी साइकोलॉजिकल और फिलोसोफिकल सच्चाइयां बताती हैं। ये इंसान के मन को, समाज को समझने के नक्शे हैं। और ये भी कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, हमारे कर्मों का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, एक कॉस्मिक इकोलॉजी है।
पटनायक के काम में कुछ ऐसे विचार हैं जो बार बार आते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे वो कहते हैं।
हाँ, जैसे वो दर्शन वाली बात कहते हैं, पश्चिम में पौराणिक कथा दूसरे का झूठ मानी जा सकती है, भारत में ये सभी का व्यक्तिपरक सत्य है। ज्ञान एक सत्य खोजने में नहीं बल्कि दूसरों के सत्यों की सराहना करने के लिए अपने मन का विस्तार करने में है। ये कितनी बड़ी बात है।
बिल्कुल, बहुलवाद और सहानुभूति। और एक ये भी है, धर्म नियमों की सूची का पालन करना नहीं है, यह अपनी क्षमता को पहचानना और दूसरों को उनकी क्षमता पहचानने में सक्षम बनाना है। अधर्म तब होता है जब हम दूसरों को कम करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
वाह, मतलब अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ भी जरूरी है। ये तो आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल के बिल्कुल उलट सोच है।
हाँ, और वो देव असुर वाली बात भी बहुत पावरफुल है। देव और असुर अच्छे और बुरे नहीं है, वे असुरक्षित अमीर और असुरक्षित गरीब है। उनका संघर्ष ब्रह्मांड का इंजन है जो मान्यता और शक्ति की सार्वभौमिक मानवीय भूख से प्रेरित है।
ये अच्छे बुरे के सिंपल लेबल्स को तोड़ देता है, हमें इंसानी मोटिवेशंस को ज्यादा गहराई से देखने में मदद करता है।
और वो लाइन, पौराणिक कथाओं में कोई खलनायक नहीं होते, केवल अलग अलग विश्व दृष्टि वाले लोग होते हैं, ये समझने पर जोर देती है, जजमेंट पास करने पर नहीं।
सही। और अंत में ये भी, लक्ष्य जीवन चक्र से भागना नहीं है बल्कि इसे इतनी गहराई से समझना है कि आप इस पर शान से सवारी कर सकें। मतलब पलायन नहीं बल्कि कुशलता और संतुलन विकसित करना है।
तो ये सारी गहरी बातें, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है इनकी?
देखिए, कई लेवल पर हो सकती हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए जीवन के उतार चढ़ाव को साइक्लिक समझकर स्वीकार करना सीख सकते हैं। जब बुरा वक्त आए तो याद रखें, ये भी बदलेगा। कर्म के सिद्धांत को जिम्मेदारी की तरह देखें तो हम शायद बेहतर चॉइस लेंगे।
और दूसरों के दर्शन को समझने की कोशिश।
हाँ, उससे हमारी एम्पैथी बढ़ेगी, हम कम जजमेंटल होंगे, रिश्तों में टकराव कम होगा।
और प्रोफेशनल लाइफ में, काम की जगह पर, मैनेजमेंट में?
वहां भी ये बहुत काम आ सकता है। लीडरशिप में ही देखिए, कभी आपको राम की तरह नियमों पर अड़िग रहना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है, तो कभी कृष्ण की तरह फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट देखकर फैसले लेने पड़ते हैं।
यानी सिचुएशनल लीडरशिप।
बिल्कुल, एक ही स्टाइल हमेशा काम नहीं करता। और दर्शन का आइडिया, वो आपको अपने कर्मचारियों, अपने कस्टमर्स, अपने स्टेक होल्डर्स के अलग अलग नजरिए समझने में मदद करेगा। आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे, बेहतर सोल्यूशन निकाल पाएंगे।
और ये समझना कि असली बदलाव सिर्फ पॉलिसी बदलने से नहीं, सोच बदलने से आता है।
हाँ, ये लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को सिर्फ क्या करना है ये ना बताएं बल्कि क्यों करना है उसके पीछे की गहरी समझ विकसित करने में मदद करें।
और परिवार में, समाज में?
वहां भी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद मिलती है। हर रिश्ते का अपना धर्म होता है, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रासंगिक धर्म। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि सामने वाले का भी अपना एक वैलिड नजरिया, दर्शन हो सकता है, तो बहस की जगह बातचीत की गुंजाइश बनती है, टॉलरेंस बढ़ता है।
मेरे लिए तो आज के इस बातचीत से सबसे बड़ी टेक अवे यही है कि ये प्राचीन कथाएं सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं है, ये लिविंग विजडम है, आज की कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने के लिए गाइडेंस दे सकती हैं। और खासकर वो दर्शन वाला विचार कि सत्य व्यक्ति परक है और हमें दूसरों के नजरे को समझना चाहिए, आज की पोलराइज्ड दुनिया में इसकी कितनी जरूरत है।
बिल्कुल, और मेरे लिए धर्म की प्रासंगिकता, मतलब कॉन्टेक्स्चुअल नेचर, और जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच वो संतुलन खोजने का विचार वो बहुत रेजोनेट करता है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान सिर्फ सही जवाब ढूंढ लेना नहीं है, बल्कि बेहतर सवाल पूछना और कई नज़रियों की सराहना करना है। पटनायक ने वाकई इन कहानियों को देखने का एक नया चश्मा दिया है। ये सच में हमारे मन और समाज को समझने के बहुत पावरफुल टूल्स हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।